एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, जब मैं कहता हूं रेगिस्तान तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद दूर दूर तक फैली रेत, चिलचिलाती धूप, ऊंट और शायद खालीपन। आज हमारा मिशन इसी एक शब्द को तोड़ना है, बंजर। हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतरेंगे जिसे हम गलत समझते आए हैं।
और इस सफर में हमारे गाइड होंगे भौतिक भूगोलवेत्ता निक मिडिल्टन और उनकी किताब डेजर्ट्स, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये रेगिस्तान के बारे में हमारे पूरे नजरिए को चुनौती देती है।
बिल्कुल, और आज जब हम जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी की एक तिहाई जमीन को समझना वो पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
तो चलिए इस धारणा को हमेशा के लिए बदल देते हैं।
किताब में उतरने से पहले लेखक को जानना जरूरी है। निक मिडिल्टन वो कोई आम अकादमिक नहीं है जो सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर रिसर्च करते हैं।
हाँ बिल्कुल नहीं, वो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में भूगोलवेत्ता तो है लेकिन साथ ही एक असली खोजकर्ता भी है, एक एडवेंचरर।
सही कहा, उन्होंने गोइंग टू एक्सट्रीम जैसे टीवी शो किए हैं।
हाँ, जहाँ वो सचमुच दुनिया के सबसे मुश्किल जगहों पर गए हैं।
इसका मतलब है कि वो रेगिस्तान के बारे में सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्होंने वहाँ की सूखी हवा में सांस ली है, वहाँ के लोगों के साथ रहे हैं।
उनका ज्ञान मतलब किताबों और जमीनी हकीकत का एक बेहतरीन मिश्रण है।
तो हमारे पास एक ऐसा गाइड है जो हमें सिर्फ ज्ञान नहीं बताएगा बल्कि उस जगह का एहसास भी कराएगा।
और यही इस किताब की खूबी है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है, उस सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ना कि रेगिस्तान बेकार निर्जीव जमीन है। मिडिल्टन का तर्क है कि रेगिस्तान असल में पृथ्वी के सबसे जटिल, विविध और गतिशील इकोसिस्टम में से है।
तो किताब का मतलब सबसे बड़ा सवाल यही है, एक रेगिस्तान आखिर है क्या?
और मिडिल्टन का जवाब वो हमें चौंका देता है। वो कहते हैं कि इसका जवाब गर्मी या रेत नहीं बल्कि सिर्फ एक चीज है।
क्या?
शुष्कता, एरिडिटी।
शुष्कता?
हाँ, यानी नमी की भारी कमी। और किताब इसी एक विचार को लेकर एक सफर पर निकलती है।
चलिए अब इस सफर के कुछ अहम पड़ावों पर रुकते हैं। पहला ही अध्याय उस बड़े सवाल से शुरू होता है,
रेगिस्तान क्या है।
हाँ, और यहीं पर पहला धमाका होता है।
जी, मिडिल्टन बताते हैं कि रेगिस्तान की पहचान उसकी शुष्कता से होती है, जिसे एरिडिटी इंडेक्स से मापा जाता है।
एरिडिटी इंडेक्स?
हाँ, ये इंडेक्स देखता है कि किसी जगह पर कितनी बारिश होती है और उसके मुकाबले कितना पानी भाप बनकर या पौधों के जरिए उड़ जाता है।
अच्छा,
अगर उड़ने वाला पानी बरसने वाले पानी से बहुत ज्यादा है तो वो जगह शुष्क से।
ठीक है, ये तो विज्ञान की बात हुई, लेकिन इसका नतीजा क्या है?
नतीजा ये है कि इस परिभाषा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा
नहीं
बल्कि अंटार्कटिका है।
एक मिनट, क्या कहा आपने? अंटार्कटिका, बर्फीला महाद्वीप?
हाँ, अंटार्कटिका।
लेकिन वहाँ तो सिर्फ बर्फ है, ये कैसे हो सकता है? ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है।
यही तो इस किताब का कमाल है। अंटार्कटिका एक ध्रुवीय रेगिस्तान है, वहाँ इतनी ज्यादा ठंड है कि सारा पानी बर्फ के रूप में जम गया है, वो पौधों या जानवरों के लिए तरल रूप में उपलब्ध नहीं है।
अच्छा, पानी की अनुपलब्धता।
बिल्कुल, और यही रेगिस्तान की असली परिभाषा है, पानी की अनुपलब्धता, चाहे वो गर्मी से भाप बनकर उड़े या ठंड से जम जाए।
वाह, तो इस परिभाषा के हिसाब से तो आर्कटिक का बड़ा हिस्सा भी रेगिस्तान हुआ।
हाँ हुआ।
ये परिभाषा तो हमारी सोच की सीमाओं को ही बदल देती है। रेगिस्तान मतलब ठंड भी हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था।
बिल्कुल, और ये हमें अगले मुद्दे पर लाता है, जब रेगिस्तान का मतलब सिर्फ रेत नहीं है तो फिर वो दिखते कैसे हैं?
हाँ, क्योंकि जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे अभी भी रेत के विशाल टीले ही दिखते हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो रेगिस्तान का सिर्फ एक रूप है।
अच्छा।
रेत के इन समुद्रों को अर्ग कहते हैं, लेकिन रेगिस्तानों का ज्यादातर हिस्सा, लगभग 70%, असल में पथरीला और बजरी वाला होता है।
70%?
हाँ, इन मैदानों को रेग्स कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ से तेज हवा ने सारी महीन रेत उड़ा दी है और पीछे सिर्फ पत्थर और कंकड़ छोड़ दिए हैं।
तो जो क्लासिक छवि हमारे दिमाग में है वो असल में अपवाद है, नियम नहीं।
सही पकड़ा आपने। और एक तीसरा प्रकार भी है, हमादा, जो ऊंचे चट्टानी पठार होते हैं। तो आप देखिए, रेगिस्तान का मतलब नर्म रेत नहीं बल्कि ज्यादातर पत्थर, बजरी और चट्टाने हैं।
और यहीं पर पानी की भूमिका और भी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ पानी की कमी रेगिस्तान बनाती है, लेकिन किताब कहती है कि कभी कभार होने वाली मूसलाधार बारिश ही जमीन को आकार देने वाली सबसे बड़ी ताकत है। ये तो एक विरोधाभास है।
ये एक शानदार विरोधाभास है। सोचिए, सालों तक जमीन सूखी पड़ी है, फिर अचानक कुछ घंटों में इतनी बारिश होती है कि सूखी जमीन उसे सोख नहीं पाती
और अचानक बाढ़ आ जाती है।
बिल्कुल, यही प्रचंड बाढ़ सूखी नदी घाटियां बनाती है, जिन्हें अरबी में वादीज कहते हैं।
तो जो पानी जीवन के लिए तरसता है, वही कभी कभी आकर पूरे परिदृश्य को तराश कर रख देता है।
अब बात करते हैं रेगिस्तान के सबसे हैरान करने वाले पहलू की, जीवन।
हाँ, ये अध्याय तो प्रकृति की रचनात्मकता का एक जीता जागता सबूत है।
बिल्कुल, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों को ज़ेरोफाइट्स कहते हैं और उनमें कमाल के अनुकूलन होते हैं।
जैसे?
जैसे कैक्टस जैसे रसीले पौधे जो अपने मोटे तनों में पानी जमा कर लेते हैं
और उनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं ताकि पानी का वाष्पीकरण कम हो।
सही।
वाह, कुछ पौधों की जड़ें तो जमीन में बहुत गहराई तक चली जाती हैं।
अच्छा जी, उन्हें फ्रिएटोफाइट्स कहते हैं। ये पौधे एक तरह से अपना कुआं खुद खोद लेते हैं।
वाह।
लेकिन सबसे अद्भुत है वो पौधे जो सूखे से बचते हैं, वो सालों तक बीज के रूप में चुपचाप पड़े रहते हैं
और जैसे ही बारिश होती है वो मानो नींद से जाग जाते हैं।
हाँ, कुछ ही दिनों या हफ्तों में उगते हैं, फूल देते हैं, बीज बनाते हैं और अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं।
कमाल है।
और जानवरों की दुनिया तो और भी कमाल की है। ऊंट के बारे में तो हम जानते ही हैं।
हाँ, उसके खूबड़ में पानी होता है।
नहीं, यही तो गलतफहमी है। उसके खूबड़ में पानी नहीं, ऊर्जा के लिए वसा मतलब फैट जमा होता है।
अच्छा।
लेकिन असली हीरो तो कंगारू रैट जैसे छोटे जीव हैं।
रुकिए, कंगारू रैट? क्या ये सच है कि वो अपनी पूरी जिंदगी बिना एक बूंद पानी भी गुजार सकता है? बिल्कुल भी नहीं।
ये बिल्कुल सच है और यही प्रकृति का जादू है।
पर कैसे? ये तो जीव विज्ञान के नियमों के खिलाफ लगता है।
वो अपने मेटाबॉलिज्म यानी भोजन पचाने की प्रक्रिया से ही पानी बना लेता है।
क्या बात है।
जो सूखे बीज वो खाता है उसे तोड़ने की रासायनिक प्रक्रिया में पानी एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है और वही उसके लिए काफी होता है।
अविश्वसनीय। इसके बाद किताब इंसानी कहानी पर आती है।
हाँ, और उन्होंने दो मुख्य जीवन शैलियां अपनाई। एक तो है खाना बदोशों का जीवन,
जैसे अरब के बद्दू या सहारा के तुआरेग लोग।
जी, ये अपने जानवरों के साथ पानी और चारे के तलाश में हमेशा घूमते रहते हैं।
और दूसरी जीवन शैली इसके ठीक उलट है।
हाँ, वो है नखलिस्तान कृषि, ओएसिस एग्रीकल्चर। ये एक स्थिर जीवन शैली है। जहाँ भी पानी का कोई स्रोत मिला, इंसानों ने वहाँ स्थायी बस्तियां बसाई।
और अब आते हैं उस हिस्से पर जो बेकार जमीन वाली धारणा पर सबसे जोरदार चोट करता है, रेगिस्तानी संसाधन।
बिल्कुल, मध्य पूर्व का तेल और गैस तो सब जानते हैं, लेकिन चिली के अटाकामा रेगिस्तान से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तांबा निकलता है। नामीबिया के रेगिस्तान से हीरे निकलते हैं। ये संसाधन वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
और किताब का तर्क है कि भविष्य का सबसे बड़ा संसाधन जमीन के नीचे नहीं बल्कि ऊपर है।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा, भविष्य का सबसे बड़ा संसाधन है सौर ऊर्जा,
सोलर एनर्जी।
साफ आसमान और साल के ज्यादातर दिन तेज धूप। बड़े बड़े सोलर फार्म लगाने के लिए रेगिस्तान दुनिया की सबसे अच्छी जगह है।
भारत के लिए तो ये बात बहुत मायने रखती है। हमारे पास थार का रेगिस्तान है, कच्छ का रण है।
निश्चित रूप से ये हमारे ऊर्जा भविष्य की कुंजी हो सकते हैं।
और अंत में किताब एक बहुत जरूरी फर्क समझाती है, रेगिस्तान और मरुस्थलीकरण के बीच का फर्क।
हाँ, डेजर्ट्स और डेजर्टिफिकेशन, ये दोनों एक ही चीज नहीं है।
ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी।
रेगिस्तान एक प्राकृतिक स्वस्थ इकोसिस्टम है, जबकि मरुस्थलीकरण एक मानव निर्मित विनाशकारी प्रक्रिया है।
मतलब जमीन का बीमार पड़ना।
हाँ, जिसमें उपजाऊ सूखी जमीन इंसान की गलत गतिविधियों के कारण अपनी जैविक उत्पादकता खो देती है और बंजर हो जाती है, और इसका कारण इंसान है।
लेकिन इसके मुख्य कारण क्या है?
किताब साफ कहती है कि कारण मानव जनित है। अत्यधिक चराई, वनों की कटाई और सिंचाई के गलत तरीके, जिससे जमीन में नमक जमा हो जाता है।
अफ्रीका का साहिल क्षेत्र इसका एक उदाहरण है शायद।
बिल्कुल, वो इसका सबसे दुखद उदाहरण है।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ बड़े विचार उभर कर आते हैं। मेरे लिए पहला और सबसे बड़ा विचार है रूढ़ियों को तोड़ना। रेगिस्तान का मतलब सिर्फ गर्मी और रेत नहीं बल्कि शुष्कता है, और ये परिभाषा सब कुछ बदल देती है।
मेरे लिए दूसरा बड़ा विचार है पानी का वो विरोधाभास।
हाँ।
जिसकी कमी जीवन को परिभाषित करती है, उसी की दुर्लभ और शक्तिशाली मौजूदगी पूरे परिदृश्य को आकार देती है।
तीसरा, अनुकूलन और लचीलापन। रेगिस्तान जीवन की कमाल की रचनात्मकता का प्रमाण है।
सही बात है। और चौथा मानवीय पदचिन्ह, ये एक दोधारी तलवार है। सदियों से इंसान रेगिस्तान के साथ संतुलन में रहे हैं, लेकिन आज
हमारी आधुनिक गतिविधियां मरुस्थलीकरण जैसी समस्याओं को जन्म दे रही हैं।
हाँ, ये सह अस्तित्व बनाम विनाश की कहानी बन गई है।
और आखिरी अप्रयुक्त क्षमता, हमें रेगिस्तानों को एक समस्या के बजाय एक अवसर के रूप में देखने की जरूरत है, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में।
किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो इन विचारों को बहुत खूबसूरती से समेटती हैं, जैसे एक ये है, एक रेगिस्तान की परिभाषा रेत या गर्मी की उपस्थिति से नहीं बल्कि पानी की भारी अनुपस्थिति से होती है।
ये एक लाइन पाठक की पूरी समझ की नींव हिला देती है।
बिल्कुल। और एक और है जीवन के बारे में, रेगिस्तान में जीवन केवल मुश्किल से मौजूद नहीं रहता, इसने पनपने के लिए सरल और अक्सर सुंदर समाधान विकसित किए हैं।
ये संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि जीत और लचीलेपन की कहानी है।
और मरुस्थलीकरण तेरी ये सबसे जरूरी पंक्ति है, मरुस्थलीकरण रेगिस्तान की रेतीली सीमाओं का आगे बढ़ना नहीं है, ये इंसानी हाथों से लगे हजारों घावों से उपजाऊ भूमि की मृत्यु है।
ये सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय करती है, ये प्रकृति पर दोष मढ़ने की बजाय हमें आईना दिखाता है। और भविष्य को लेकर ये आशावादी विचार मुझे बहुत पसंद आया। कभी बेकार जमीन समझे जाने वाले रेगिस्तान भविष्य के संसाधन पावर हाउस के रूप में उभर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा संसाधन रेत के नीचे नहीं बल्कि ऊपर से चमकता है, सूरज।
इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी सीधा असर है। नीति निर्माताओं के लिए इसका मतलब है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सिर्फ पेड़ लगाना काफी नहीं है,
बल्कि खेती और पशु चराने के स्थायी तरीकों को बढ़ावा देना होगा।
सही।
और अगर हम भारत की जलवायु परिवर्तन की रणनीति के बारे में सोचें, तो हमें अपने शुष्क क्षेत्रों को एक समस्या के तौर पर नहीं बल्कि सौर ऊर्जा उत्पादन के एक विशाल केंद्र के रूप में देखना चाहिए।
ये एक गेम चेंजर हो सकता है।
व्यक्तिगत स्तर पर भी ये हमारी सोच बदलता है। अगली बार जब हम यात्रा करें और किसी शुष्क इलाके को देखें,
जैसे लद्दाख या स्पीति घाटी,
हाँ, तो उसे खाली या बंजर ना समझें। हम उसे एक नाजुक, जीवित, ठंडे रेगिस्तान के रूप में देखेंगे और उसके प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनेंगे।
और ये नवाचार के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा है। रेगिस्तानी जीवों से सीखकर हम जल संरक्षण की बेहतर तकनीकें विकसित कर सकते हैं।
इस पूरी चर्चा में मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात तो वही थी कि अंटार्कटिका भी एक रेगिस्तान है। ये एक तथ्य आपकी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल देता है। ये आपको हर उस चीज पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है जो आप सोचते थे कि आप जानते हैं।
और मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी जगह के बारे में हमारी धारणा ये तय करती है कि हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं।
सही बात है।
जब तक हम रेगिस्तान को एक बंजर और बेकार जमीन के रूप में देखते रहेंगे, हम उसका शोषण ही करेंगे। जिस दिन हम उसे एक जटिल मूल्यवान इकोसिस्टम के रूप में देखना शुरू करेंगे, हम उसकी असली कीमत समझेंगे।
तो अंत में हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। पृथ्वी की एक तिहाई जमीन शुष्क है। अगर हम इन क्षेत्रों को समस्याओं के पहाड़ के बजाय अवसरों का खजाना मानना शुरू कर दें, तो वे हमारी सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों जैसे ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन को हल करने में क्या भूमिका निभा सकते हैं। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।